मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि मह जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम सभी लोग पिछले दो दिनों से श्रावक के जीवन में वो किस तरह से भेद विज्ञान की प्राप्ति करे, वो किस तरह से आत्मशोधन करे, किस तरह से वो आत्मानुभूति का स्वाद ले सके, इसके लिए उसके जीवन में क्या है, तो उसके जीवन में पूजा और अभिषेक दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं बहुत प्रैक्टिकल, जिनके के माध्यम से वो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मेरे अपने आत्मा का वही स्वरूप है जो कि सामने भगवान अनंत का स्वरूप है, मुझे भी ठीक वैसे ही आत्मानुभूति प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता है जैसी कि भगवान को है। भगवान की पूजा करके और एक श्रावक इस तरह की अनुभूति कर सकता है। अभिषेक करके भगवान के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। साक्षात अनंत भगवान को तो छुआ नहीं जा सकता, उनको तो सिर्फ देखा जा सकता है, समोशरण में उनके दर्शन होते हैं। पर अब कैसे हम भगवान का स्पर्श करें, तो जिन बिंब जिनमें कि हमने भगवान की अनंत अवस्था की या सिद्ध अवस्था की स्थापना करी है, उसका स्पर्श करके मानो हम और भगवान का ही मैंने स्पर्श किया है ऐसी भावना भा सकते हैं। वो दो तरह से हम इस पूजा को संपन्न करते हैं, एक निश्चय पूजा है और एक व्यवहार पूजा है। जब हम भगवान के सामने पहुंचकर उनके गुणों का स्मरण करते हैं और भगवान और अपने में कोई फर्क नहीं है, ऐसा जब हमारे भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, तब वो निश्चय पूजा कहलाती है, जिसमें हम किसी भी चीज का आलंबन नहीं लेते हैं, सिर्फ हम अपने भावनाओं को इतना विशुद्ध करते हैं कि उन भावनाओं के द्वारा। निश्चय पूजा में तो यह है कि आराध्य और आराधक दोनों के बीच एक गहरा तादात्म्य उत्पन्न होता है, एक रूपता हो जाती है। जैसे वादिराज महाराज कहते हैं, प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम ताम अनुध्याय तो में त्वये वाहम सैति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्ये वेयम तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपाम दोषात्मानो द्वैमत फलास्तत् प्रसादात् भवन्ति। हे भगवान, जब जब भी मैं आपके चरणों में जाकर के बैठता हूं, आपके दर्शन करता हूं, तो मेरे भीतर ये भाव उमड़ता है कि जो स्वरूप आपका है सो ही मेरे आत्मा का भी वैसा ही स्वरूप है, मैं ठीक आपके जैसा ही हो गया हूं। सा अहमिति सोहम शब्द, साहम वह जो भगवान आप हैं सो ही मैं हूं, ऐसा मुझे उस समय भाव उमड़ता है, प्रादुर्भूत उत्पन्न होता मेरे भीतर। वास्तव में भगवान के दर्शन, पूजन और अभिषेक हमारे भीतर अगर ऐसी भावना उत्पन्न कर सकें तो वो हमारा दर्शन पूजन सब सार्थक हो जाता है। तो ऐसी अनुभूति होने पर और फिर क्या कहते, खुद ही कहते हैं वो कि मिथ्ये वेयम, हालांकि ये बात झूठी है, अभी मैं आपके जैसा नहीं हूं, आपके जैसा बनने की मेरे अंदर क्षमता है, इसका मुझे एहसास हो गया। मिथ्ये वेयम, अभी मैं आपके जैसा नहीं हूं, पर फिर भी ऐसा विचार आने पर कि मैं आपके जैसा हो सकता हूं, ये बात मुझे बड़ा संतोष देती है, तृप्ति मिलती है मुझे। सो ठीक ही है, भगवान आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से और पतित से पस्तित मोही जीव भी और अपना कल्याण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? वे आपका सानिध्य पाकर के जो है और अपने परिणामों को ऐसा निर्मल बना करके अपना कल्याण कर लेते हैं। भगवान हमारा कल्याण करते हैं ऐसा थोड़ी है, कल्याण तो हम अपने हाथ से खुद ही करते हैं। भगवान को हम निमित्त बना लेते हैं कि भगवान आपका जैसा स्वरूप है उसे देख करके मुझे अब अपने भूले हुए स्वरूप की याद आ गई, जैसे कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे नहा करके लौट रहा था और नदी के किनारे वो अपनी टॉवल भूल आया और सामने से एक और नहाने आने वाला व्यक्ति था, उसके कंधे पर टॉवल देख करके याद आ गया कि अरे अपनी कहां गई, तो फौरन लौटे फिर अपनी उठा लाए। जैसे हम दूसरे के पास वही चीज देख करके अपनी भूली चीज को याद कर लेते, ऐसे ही रोज रोज भगवान के गुणों का स्मरण करके हम अपने ही वास्तव में अपने भीतर जो गुणवत्ता है उसका स्मरण करते हैं, तो ये वास्तविक पूजा है। लेकिन इसमें ज्यादा देर मन नहीं लगता, थोड़ी देर करेंगे, जितना ज्ञान है उतना विचार कर लेंगे कि ऐसे हैं भगवान, ऐसा है उनका स्वरूप, लेकिन ज्यादा देर मन नहीं लगता, यहां वहां मन भटक जाता। तो कहते अब उसको मन को लगाने के लिए क्या करें, शरीर को लगाने के लिए क्या करें, पांचों इंद्रियों को लगाने के लिए क्या करें, तो फिर व्यवहार पूजा का आलंबन लेना पड़ता है। विभिन्न प्रकार से आलंबन, मूर्ति का आलंबन ले लिया, आठ द्रव्यों का आलंबन ले लिया, किताब सामने है वाणी का आलंबन ले लिया, शरीर और वाणी सब उसी में लग गए, हाथ द्रव्य चढ़ाने में लग गए, आंखें भगवान को देख ही रही हैं, वाणी से हम उनके गुणगान कर रहे हैं, मन तो उनके प्रति श्रद्धा रख ही रहा है, मन से तो कर ही रहे थे, लेकिन ज्यादा देर मन से नहीं हो पाता गुणगान, तो हम साथ में ये सब विस्तार लेते हैं बाह्य में, वो सब व्यवहार पूजा है जिसको अपन द्रव पूजा भी कह देते हैं, उसका भी आलंबन जरूरी है। भगवान के स्वरूप को पाने के लिए हमने ये सब जो बाह्य में पूजा की द्रव्य बनाई है या सामने वीतराग मूर्ति स्थापित की है, उस सब स्थापना का मामला है। मूर्ति में भी पाषाण है, उसमें हमने भगवान की स्थापना कर ली, चिटकों में नैवेद्य की स्थापना कर ली, ल्याए तो चंदन बाजार से है, कह रहे मलयागर का चंदन ले आए, पानी तो अपने कुएं में से भर के लाए, कह रहे चीर समुद्र का पानी। अब क्या करें हम, हमारी जितनी गुंजाइश है, पर हमें भावना कौन सी है, स्थापना वही है। ऐसा विचार करके हम अपना ऐक्य करते हैं, हम अपना तादात्म्य जोड़ते हैं भगवान से इन सब आलंबन लेकर के। सो ये आलंबन भी बुरे नहीं है, आलंबन आवश्यक है, हम इतने सक्षम नहीं, हमारे उपादान में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अधिक देर तक 24 घंटे तक स्वरूप का ही चिंतन करते रहें, हमें तो उसके चिंतन के लिए भी बाह्य में आलंबन चाहिए पड़ता है। तो ये सब पूजा की जितनी द्रव्य है, सामग्री है, वो सब आलंबन है भैया। अभिषेक भी अपने परिणामों को निर्बल बनाने का आलंबन है और आठों द्रव्य भी आलंबन है। आठ द्रव्य आज से नहीं है, अनादि काल से हैं। भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ देव की आदि काल में, युग के आदि में अष्ट द्रव्य से पूजा की थी। दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुप्पेन, दिव्येन धुव्येन, दिव्येन वासेन, दिव्येन चुन्नेन, दिव्येन नानेन सयानिच्च काल मंचंती पूजंती अहमभि तत् संतायम। ठीक वैसी ही मैं भी यहां उसी परंपरा से कर रहा हूं पूजा जो कि पहले की गई है, या कि सौधर्म इंद्र जा करके और पांचों मेरियों मेरुओं पर पूजा पाठ करके नंदीश्वर दीप में अष्टानिका में पूजा करता है, सो मैं भी वैसी ही यहां पर और पूजा उसी परंपरा से, तत्थ संताइयम, उसी संतान, उसी संतति या उसी परंपरा से मैं भी। अपन क्या करेंगे, ये महान लोग जो है वो इस तरह की पूजा करते हैं। आज अपन जरूर ऐसा प्रश्न उठा लेते हैं कि क्या पता आठ द्रव अब यह आ गए जी, पहले थोड़ी थे आठ द्रव। ऐसा कई लोग भ्रम भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आठों द्रव से पूजा अनादि काल से चली आ रही, ये बात जुदी है कि उनके पास दिव्य थी, अपने पास अपनी जैसी सुविधा है वैसी द्रव्य है। और दोनों प्रकार की पूजा की पद्धति रही, सचित्त द्रव्य की भी रही और अचित्त द्रव्य की भी रही। दोनों प्रकार से सनातन है, आगम प्रमाण है, दोनों प्रकार की पूजा। सदा सुखलाल जी अपने रतनगण शाप्काचार की व्याख्या में लिखते हैं कि नाना प्रकार से सचित और अचित द्रव्यों से जो पूजा कही गई सो दोई सनातन पद्धति है। पूजा तो द्रव्यन करी न होवे, पूजा तो भावन करी होवे। अरे द्रव्य में मत उलझो, पूजा तो अपने भाव लगाने के लिए है। सो भाव लग गए सो द्रव्य तो पीछे छूट जाती है और अपन जो है कहो द्रव्य में अटके रहे और भाव तो अपने छूट जाते। द्रव्य छूट जाओ चाहिए, भाव लगे रहो चाहिए, है ऐसा, लेकिन होता उल्टा है कि भाव छूट जाए तो द्रव्य पकड़े रह जाते अपन कि कौन सी चला उनने, उनने तो बचड़ाई थी, इतना ही नहीं जानत जी, ऐसा कहेंगे अपन। नहीं, द्रव्य तो बहुत बहुत सामान्य है, हम हमारी अपनी च्वाइस है, हम जैसी द्रव्य चुनना चाहें सचित और अचित दोनों प्रकार से। और एक नित्य पूजा होती है भैया और एक नैमित्तिक पूजा होती, जरा इसको समझ लें। वैसे तो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से छह प्रकार की पूजा भी कही गई है, और विशेष रूप से नित्य पूजा और नित्य जिसको नित्य मह कहते हैं यह सदार्चन कहलाती है। पूजा के ऐसे नाम हैं जो रोज की जाती, उसमें लिखा है अपने घर से जल चंदन इत्यादि द्रव्य ले जाकर जिनालय में भगवान के समक्ष मंत्र पूर्वक भेंट करना, निर्वपामीति स्वाहा। स्वाहा का मतलब है भस्म कर देना, ऐसा नहीं है, वैदिक संस्कृति में है स्वाहा का अर्थ भस्म कर देना। अपने यहां पर स्वाहा का अर्थ है शांति और पुष्टि के लिए मैं इस द्रव्य को समर्पित करता हूं, भस्म या नष्ट करता हूं ऐसा नहीं लिखा। मेरी अपनी शांति और मेरे धर्म की दृढ़ता पुष्टि के लिए मैं ये चढ़ाता हूं, मेरे अपने लोभ को कम करने के लिए, मैं निर्लोभ होने के लिए द्रव्य अर्पित कर रहा हूं। मैं जितना जितना निर्लोभी होता हूं उतना मैं धर्म में दृढ़ होता जाता हूं, लोभ मुझे धर्म से विमुख करता है, इसलिए मैं इस सब लोभ को नष्ट करने के लिए इस द्रव्य की स्वाहा नहीं कर रहा हूं, अपने लोभ की स्वाहा कर रहा हूं। हाँ, द्रव्य चढ़ा करके अपने लोभ को नष्ट करना चाहता हूं। ऐसे उसमें मंत्र पूर्वक जो चढ़ाता वो सदार्चन कहलाता है। दान देना भी पूजा में शामिल किया, ग्राम खेत दान पत्र लिख करके देना सदार्चन, मुनि जनों की पूजा करना वो भी सदार्चन, नित्य मह जिसको कहते रोज रोज चावक और अपने घर से द्रव बना करके लाता, उसका आशय क्या है, घर से बनाने का, अपने द्रव से करना। लगी लगाई द्रव जो धरी है सामूहिक सामलाती, उससे तो सब कर लेते हैं, अपने हाथ से पूजा की थाली सजाई है। जिनेन्द्र वर्णी लिखते हैं कि ये मेरा नहा धो करके अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन करके आना और फिर बड़े उससे उत्साह से और द्रव्य सजाना, और क्या करता हूँ मैं भगवान के सामने सजी सजाई द्रव्य को एक थाल में से उठाकर दूसरे में पटकते जाना, ये सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन ये मेरा पागलपन उस संसार के पागलपन से ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं करता हूं। अगर देखा जाए तो करते क्या है अपन, इतनी उत्साह से तैयारी करी, सब पूजा लगाई और इमें से उठाइयों में डाल दो, इमें से उठाइयों में डाल दो, तो करते क्या बताओ आप, और कुछ करते हैं क्या,
लेकिन ये जो उठा के यहां डालना है तो ऐसा नहीं समझना, इससे हमारे परिणाम लगते हैं, इससे हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन सब कुछ पवित्र हो जाता, संसार भूल जाता उतनी देर जितनी देर यहां वहां ध्यान चला जाएगा। और अगर आपका ध्यान इस पे है कि अब चिटकें चढ़ाई थी, अब दीप चढ़ाना है, अब जी चढ़ाना, धूप चढ़ाना है, उसमें ध्यान, थाली में ध्यान है, भगवान के तरफ दृष्टि चली जाती, फिर थाली में दृष्टि चली जाती है बस, और कहीं यहां वहां दृष्टि नहीं जा पाती। मुख से वचन कौन से निकले जिसमें भगवान की प्रशंसा है, जिसमें भगवान के गुणगान गाए गए हैं, और विचार क्या चल रहा, ऐसा ही जैसा मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं ऐसे ही गुण मेरे भीतर सोए पड़े हैं, मैं भूल गया, मैं अब अपने उन गुणों को प्रकट करूंगा। तब ये सदार्चन या नित्य महापूजा श्रावक के जीवन को निर्मल बनाने में कारण बन जाती। एक चतुर्मुखिया की सर्वतोभद्र पूजा होती है, उसके बारे में लिखा कि मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है। आज तो मुकुटबद्ध राजा नहीं है, लेकिन उसी परंपरा से कई लोग बड़ी, उनको बड़ी पूजा कहलाती है। अपन विस्तार लेते, आठ आठ दिन की पूजा विधान कहलाता, विधान नहीं है वो, एक तरह से बड़ी पूजा है। तो ये जो चतुर्मुखिया सर्वतोभद्र है, मुकुटबद्ध राजाओं से, चक्रवर्ती के द्वारा किमक्षक दान दे करके की जाने वाली कल्पद्रुम पूजा होती, 13 दिन तक चलती है वो। और जो है अष्टानिका में की जाने वाली सिद्ध चक्र इत्यादि महापूजा, वो सब अष्टानिक पूजा, नंदीश्वर पूजा उसी अष्टानिक में की जाने वाली, और इंद्रों के द्वारा जो पूजा की जाती वो इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। सब नैमित्तिक पूजाएं हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण पूजा कर ली, 16 करण में 16 करण पूजा कर ली, महावीर स्वामी का निर्वाण आएगा तो निर्वाण की पूजा कर ली, ये सब नैमित्तिक पूजाएं कहलाएंगी। महापूजा और नित्य पूजा अपन को अवसर पूजा के खोजना चाहिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं। इतने प्रकार से नाम के, भगवान के 1008 नाम के ताही अनर्पत प्राप्त है अर्घम, ये अपन ने पूजा करनी, ये नाम पूजा हो। भगवान के तीर्थ जहां जहां उनका निर्माण हुआ, पावापुर से महावीर स्वामी है सो पावापुर का अर्घ चढ़ा दिया, ये क्षेत्र पूजा हो। भगवान ने कौन सी तिथि में उनको निर्माण हुआ उस तिथि को स्मरण करके द्रव चढ़ा दी भगवान के सामने, काल पूजा हो। तो देखो स्थापना, अनंत भगवान सामने है, उन अनंत भगवान का स्मरण करके चढ़ा रहे तो वो स्थापना पूजा है। इस तरह से नाम स्थापना, द्रव 8 प्रकार की द्रव, जल चंदन इत्यादि चढ़ाना द्रव पूजा है, और भगवान के गुणों का स्मरण करना ये भाव पूजा है। देखो द्रव क्षेत्र, नाम स्थापना, द्रव क्षेत्र, काल और भाव, 6 प्रकार की पूजा रोज जो है इस तरह से श्रावक को करनी चाहिए। उसके माध्यम से उसके जीवन में निर्मलता आती है, और इतने ही नहीं अपने भूले हुए स्वरूप का स्मरण आ जाता है। 24 घंटे हम जो भी करते हैं ये मान के चलिए अपने स्वरूप से विमुख होने के काम करते 24 घंटे नहीं करते। क्या करते हैं जी हम, जी अपना, जी पराया। अपना मतलब राग, पराया मतलब द्वेष। ज्यादा कठिन राग द्वेष कहने में तो कठिनाई लगती, और अगर ऐसे समझो कि अपना पराया, क्या करते 24 घंटे ये अपना ये पराया कहते नहीं है, लेकिन मन में भाव तो वही चलता रहता अपने पराये का। सो राग द्वेष निरंतर हमारे अपने स्वरूप से हमें विमुख करता है। सो 24 घंटे जो क्रियाएं कर रहे वो अपने से विमुख होने की क्रियाएं हैं। थोड़ी देर अगर अपने सम्मुख, अपने आत्मस्वरूप के सम्मुख आने की कोई क्रिया है तो भैया पूजा ही है श्रावक के हाथ में। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा सो स्वाध्याय कर लेगा, और मान लो अंगूठा छाप है उसको कुछ समझ में नहीं आता स्वाध्याय में, तो कम से कम कुछ तो उसके कल्याण का उपाय होवे। तो कहते पूजा ही करो, सिद्ध भगवान की पूजा करोगे तो सिद्धों के स्वरूप का चिंतन आए। अरंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, महावीर स्वामी की नाम लेके करो तो भी उसमें अरंत की पूजा है, उसमें भी अरंत के 46 मूल गुणों का वर्णन आएगा। जितने परमेष्ठी पंच परमेष्ठी की पूजा करोगे उनके स्वरूप का चिंतन ही उसमें होगा, सो वो भी स्वाध्याय है। आचार्यों ने इसीलिए कहीं कहीं पर पूजा को स्वाध्याय लिखा है कि स्वाध्याय भी पूजा में ही गर्भित है, और जो तल्लीनता आ जाती है, जो तादात में स्थित हो जाता है, इसलिए भाव संग्रह में तो इसको पदस्थ ध्यान कहा, पूजा को ही ध्यान कहा। बताइए समंतभद्र स्वामी तो कहते कि पूजा तो भगवान की सेवा है, इसलिए भैया वृत्ति में शामिल करो, अतिथि संविभाग है ये तो। हाँ, पूजा को भैया व्रत और अतिथि संविभाग में शामिल किया, और फिर कहते कि पूजा तो आत्मान्वेषण की प्रक्रिया है, अपने आत्मा को खोजने की प्रक्रिया। अपन संसार में ढूंढे तो कहीं नहीं मिल दिखती अपना स्वरूप किसी, अरे दूसरे के सामने पहुंच जाओ तो अपना स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि जो दिखाते हैं कि इनके कपड़ा अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं है। देखो किसी के सामने भी अपन जावे मिले उसने जय जिनेन्द्र करके, तो क्या ख्याल आता है, अरे वाह इनकी बहुत अच्छी पहने इनने, हम भी ऐसे ही बनवाए। वो भगवान के सामने पहुंचे तो इनने कछु नहीं पहरो, अब का इनसे हम का कंपेयर करें, कछु नहीं पहरे, मगर वास्तव में जय सुंदर दिखते हैं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो ये जो है पूजा की प्रक्रिया, हमें अपने सम्मुख हमें अपनी आत्मा की खबर लेने के लिए प्रेरित करती, इसलिए आत्मान्वेषण की प्रक्रिया है, आत्मा को खोजने की प्रक्रिया। छोटी नहीं समझना पूजा को। एक उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी करूं, फिर अपन और बैठेंगे समझेंगे पूजा के बारे में, समझ रहे हैं रोज रोज। पूजा में मुख्यता किस बात की है, तल्लीनता और तादात्म्य दो शब्द हैं, इतने एक मेक हो गए कि भगवान और हमारे अलावा तीसरा कोई नहीं है। बताओ ऐसा होता अपन की पूजा एक आध बार ऐसी भाई कि दो ही जने रह गए हों, भगवान है और हम, हमें तो ये लगता है कि देखते हम तो ऐसा लगता है कि दो ही नहीं है बाकी सब हैं। पूजा में नहीं, कई बार ऐसा नहीं हो जाता, बाकी सब दुनिया को ख्याल है और भगवान को नहीं है, नहीं अपनों आए, दो ही क्यों नहीं है। जबकि है ना, कहते ये था कि भगवान का आवे, भगवान पे संदृष्टि हटे सो अपने ऊपर आ जावे, और तीसरा कोई नहीं है, तो समझना कि हाँ अब जो है तल्लीनता आ गई, या कि तादात्म्य स्थित हो जाना। तादात्म्य स्थित होना मतलब फिर अपन भी नहीं रहे, तल्लीन हो गए थे सो दो के अलावा तीसरा नहीं रहा, और तादात्म्य इतना जुड़ गया कि हम भी नहीं रहे, भगवान ही भगवान रह गए, मैं भी भगवत स्वरूप हूं, ऐसी अनुभूति होने लगे। बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता। अपने राग द्वेष भगवान के सम्मुख खड़े होकर के भी छूटते नहीं हैं, और प्रयत्न उसी का है। जितनी देर को जो है, एक हम तो कहते 30 सेकंड को भी ऐसा एहसास हो जावे तो अपनी पूजा उस दिन सार्थक हो गई। हम आपको एक पहले सुना चुके, शायद ध्यान नहीं हमें, पर फिर से सुनाए देते हैं। ये जो विदेशी बहुत बड़े नाटककार रहे, टॉल्स्टॉय दार्शनिक भी थे, उनने वो नाटक में विभिन्न पात्र होते हैं, तब लिखना पड़ता उनके अलग अलग डायलॉग, वो क्या बोल रहे हैं, फिर दूसरा पात्र क्या बोलता है, ऐसे नाटक लिखते थे। तो उनके बारे में ये था कि जब वो लिखते थे तो वो अपने पात्रों के साथ इतने एक मेक हो जाते थे कि बाकी सब भूल जाते थे। और ऐसा एक बार उनके हुआ, वो लाइब्रेरी में से पढ़ करके लौट रहे थे और उनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसा ऐसा एक पात्र है और उससे ऐसी बातचीत हो रही है, और वो उनको ऐसा लगा कि वो मेरे बाजू में ही तो चल रहा है। इतना एक हो गया कि उन्हें लिखना था नाटक और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उसका जो पात्र है वो मेरे साथ चल रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूं। और सीढ़ी उतर रहे, और सीढ़ी दो जनों के उतर गए लाख है। अब वो उतरते समय उनको ये लगा कि एक तो मैं और एक मेरे साथ ये जो मेरा पात्र है वो चल रहा। इतना तादात्म्य हो गया कि उन्हें ये भूल ही गया कि मैं एक हूं, दो मान करके चल रहे, और सीढ़ी पे जगह भी इतना ही है। दोनों तरफ जो है फिर दीवार भी नहीं बनी थी, दोनों तरफ खुला हुआ था, और सीढ़ी दो के लायक थी।
करीब दो तो अपन पहले से उतर रहे हो, तीसरा और आ रहा, उसको जगह दो थोड़ी, सो खिसकते चले गए, खिसकते चले गए कि थोड़ी जगह मिल जाए, लेकिन कहां मिलेगी जगह वहां पर, और जा करके और सीढ़ी से नीचे गए। नीचे गिरे तो वो जो ऊपर आ रहा था उसने पकड़ करके इनको खड़ा कर दिया कि क्या करते हैं, इतनी जगह होने के बाद भी और आप ऐसे उसी उसी तरफ चले जा रहे, होश में है कि नहीं। कहने लगे पहले मैं थी, अब आ गए। जब गिरे तब समझ में आए कि हम तो एक ही थे, अभी तक तो जब हम उतर रहे थे तो लग रहा था कि हम दो हैं। बताओ जब संसार में मैं पढ़ करके मुझे लगा कि जब संसार में हम इन कामों में इतने एक मेक हो जाते हैं कि अपना आपा भूल जाते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, तो भगवान के साथ अगर हमारा एक मेक पना हो जाए तो अपने आपे का ध्यान आ जाएगा कि मेरा स्वभाव क्या है। बस पूजा जो है इतना ही अपना भला करने वाली है कि यदि हम जैसे संसार से तादात्म बना करके राग द्वेष कर लेते हैं, वैसे ही भगवान से हमारा पूजा के क्षणों में ऐसा तादात्म हो जाए, ऐसा जोड़ जोड़ जुड़ जावे। भक्त किसे कहते, जो टू यूनाइट टू यूनियन, जो जुड़ जाए वो भक्त, और विभक्त टू डिवाइड, अलग हो सो विभक्त और जुड़े सो भक्त। हम उन क्षणों में भगवान के भक्त होकर के अर्थात उनसे जुड़ करके देखें तो फिर हमें अपना स्वरूप भी और ध्यान में आएगा। पूजा हमारे इसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की प्रक्रिया भैया, हमने इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि वो भाग्योदय से और डॉक्टर साहब आए तो वो कह रहे थे कि हमें थोड़ा समय आप दे देना। आप देते ही नहीं हो कोई को भी समय, बताओ आप ही आप बोलते रहते हो तो थोड़ा सा समय उनको भी उनकी बात सुन लें। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि आज के समय में सेवा का काम कौन करता है, और मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने ही जो है आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके और इस काम को शुरू किया था। आज इतने वर्ष हो गए, पहली चर्चा हुई थी तब हमने इनको कहा था कि आप 1 करोड़ रुपए एक आदमी से लो या फिर 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया लो, दोनों में से किसे श्रेष्ठ मानोगे? तो सबसे श्रेष्ठ वो है कि जिसमें सबका मन और सबके भाव लगे हुए हैं, वही श्रेष्ठ है। और आज जो है एक ऐसी चीज अपने पास है जिससे कि हम अभी ठीक है कि हम उतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके, और वो एक ऐसी स्थिति में मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दूं भाग्योदय तीर्थ का, और लोग पता नहीं किस किस तरह सोचते हैं, पर मैंने आचार्य जी के मन में जब जो बात आई थी 1992 में, जब मुझे अभी भी ज्यों करते हूँ याद आता है। आज आचार्य जी को संस्मरण सुनाए देता हूँ। वैसे हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, और वास्तव में जन्मदिन मनाना तो यही है कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें तो सही है। तो मुझे अब भी याद आ गया और वो उदाहरण, और बिल्कुल दिख रहा है कि सामने छत पर बैठे हैं, कौन सी वाली मरिया जी के ऊपर छत पर, और वहां ये मन में आया था कि देखो ऐसा करें, यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत गरीब लोग हैं, उनको बंबई भागना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है इलाज के लिए, अगर जरा सा डायग्नोस करवाना हो, उस समय उतने साधन नहीं थे, तो एक ऐसा कुछ हो जाए अपने पास में कि जिसमें लोगों के कम से कम डायग्नोस हो जाएं, उनके जो एक्सरे हैं उनके बड़े बड़े जांचें हैं वे हो जाएं, एक अपने पास ऐसा हो और फ्री, और मान लो कि उनको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो वहीं पर वो रुक जाएं, उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था होवे, दर्शन होवे। अबे तो अस्पताल में भर्ती हो जाए तो दर्शन छूट गए, 15-15 दिन को दर्शन ही नहीं हो पा रहे, शुद्ध भोजन तो भूल ही जाओ समझ लो, सब खाने पड़ते, रात है तो दिन है तो सब होटल को है तो मुख्य उद्देश्य उनका उस समय ये था। बाकी तो दुनिया ट्रीटमेंट हर जगह ले लेती भैया, लेकिन उस इलाज के साथ साथ जब खिड़की में से आंख खुले तो बाहर जो है मानस स्तंभ में भगवान दिखाई पड़े, इधर से देखें तो दिख रहा है, उधर से देखें तो दिख रहा है, जहां से जो देखे उसको दिख रहा है, और भोजन भोजन डॉक्टर के कहे से अशुद्ध भोजन नहीं, त्यागी व्रती है तो उसके लिए जो योग भोजन है वही वहां पर मिले। मुख्य उद्देश्य ये था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया, कर रहे हैं, आगे और करेंगे। किसी भी चीज को शुरू करना और फिर उसको चरम पर ले जाना, कल्पना तो अपने बहुत ऊंचाई की रहती है, लेकिन शुरू में ही तो वो ऊंचाई नहीं छू पाते, अपन क्रम क्रम से छूते हैं, तो एक दिन और उस ऊंचाई को ही पहुंचेंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब अपन सब मिल करके उसको अपना माने। सबसे बड़ी चीज जा है कि को भी कौन काम शुरू करत है, अपन अपनो नहीं मानत सो बिलड़ जात, हाँ और कुछ नहीं है। अपन लोगों की जो प्रवृत्ति बे कर रहे बे जाने, उनकी जिम्मेदारी बिगड़े तो अपन हंस ले हैं और बन गए सो, हाँ वो कल लाओ ने हमें कछु पूछी नहीं जाने ऐसा। ये जो है इस तरह की चीजें अपने यहाँ पर क्या करें, लैग पुलिंग जिसको अपन कहते हैं, दूसरे के गुणों को सहन नहीं करना, ऐसा नहीं, अपनी प्रवृत्ति छोड़ो भैया। इतने अपन समझदार हों कम से कम कि जहाँ कुछ भी श्रेष्ठ है वहाँ मैं भी हूँ, मेरा ही काम है वो, ऐसा मान करके। अब देखो उनकी जगह हम ही ने देख क्या ही रहे थे, सही क्या आप या बोल ली और हमने फिर और बोल दो, अब आपको काम कर दो, हमने कम कम बोलने पड़ा आपको बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
मुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग रितियों में रचि पचि कर आतिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तप शैल नदी तट पर समतल वर्षा की घड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में।
अंतर ज्वाला हर पीवानी मानो धरती हो कुल घड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम साजानी क्या कोई हो जग को देवी जग की विधियां,
दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अभिनश्वर मनिया।
फिर निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वे को के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिव कानी है। अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य और आनी है।
तार वेखो पार के उतार वेखो तार वेखो यही दिनवाणी,
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो। वाणी भारती तो जपो दिन रहें जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।
चंदन कांदल पुष्प कई कर सुदीप शुभूप पलाज कई,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए मुनि राज।
ओम नि परम पूज्य स्वागुनाथ श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में, ओम नि परम पूज्य स्वागुनाथ श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्य देव पाने की स्वाहा।